ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಘನ ಆನಂದ 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 ಘನ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಘನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಚೇತನ ಆನಂದ ಘನ ಪ್ರಭು ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯವರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ
ಮನುಷ್ಯ ಹೇ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಔರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್ ದೋನೋ ಕೆ ಬೀಚ ಮೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂ ತೋ ಅಂಶ ಹೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾ ಔರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಅಂಶ ಕೋ ಉಸ್ನೆ ಪಕಡಾ ಹೈ ತೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಯೆ ಉಸ್ ಅಂಶ ಕೋ ಪಕಡಾ ರಹೇಗಾ ತಬ್ ತಕ್ ದುಃಖ ಪಾಯೇಗಾ ಕ್ಯೂಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಹಮಾರಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಬಂಧ ನಹೀ इसका दुख होता है, पर दुख के साथ हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, इस वजह से दुख सुहाता नहीं है। सुख के साथ हमारा खास संबंध है कि सुख सुहाता है। आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसी का अंश होने से इसको सुख आनंद शांति अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी खुद की चीज है। और दुख इसको खुद का नहीं है, इस वजह से दुख बुरा लगता है, संताप है, जलन है, ये बुरी लगती। परंतु इसका कारण जो प्रकृति का संबंध है उसको नहीं छोड़ता, और उसको जब तक नहीं छोड़ता तो दुख पाएगा। और दुख ये भगवान देते हैं इसको सचेत करने के लिए, स्वयं सचेत होना चाहिए, यदि हम सुहाता नहीं तो कैसे मिटावे। इस वास्ते मनुष्य के लिए खास आवश्यकता है ध्येय लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति का ही बनाना है। इस मेरी बात को सुनकर के गृहस्थ भाई बहन समझेंगे ऐसे कैसे काम चलेगा, हम कोई साधु बाबा ही थोड़ी है, हम गृहस्थ में रहने वाले हैं। तो आप गृहस्थ में रहने वाले हैं तो आपके लिए ही गीता है। गीता की शिक्षा अगर विचार कर देखा जाए तो गृहस्थ के लिए ही है। और गृहस्थ में भी युद्ध के मौके पर महान घोर कर्म के समय सुनाएंगे, और सुनाने वाले गृहस्थ महाराज रहे स्वयं कृष्ण भगवान 16,108 रानियां थी, और अर्जुन के भी कई थी, दोनों ही गृहस्थ रहे सदा के सदा। फिर ये साधुओं ग्रंथ कैसे हो जाएगा, ये तो गृहस्थों का ही है। गृहस्थ भाई बहनों को तो मन में उत्साह उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा ग्रंथ है। इसको ममता हो, इसके अनुसार जीवन बनावे। तो वो जीवन कैसे बने कि परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो गृहस्थ का काम, ये गृहस्थ का काम है साधन, साध्य नहीं है। साध्य वही चीज हो सकती जो नित्य रहने वाली, अनित्य वस्तु हमारा साध्य कैसे हो सकता है, हमारा लक्ष्य कैसे हो सकता है, हमारा ध्येय कैसे हो सकता है। हम तो निरंतर रहने वाले, लक्ष्य हमारा अनित्य हो तो हमारे साथ वो कैसे रहेगा, वो तो बिगड़ जाएगा। तो भाई लोगों को ये याद कर रखना चाहिए कि धन कमाते वो यहीं रह जाए अगर हम चले जाएंगे यहां से। ये याद रखना है कि हम मृत्यु लोग में रहते हैं, मरने वालों का लोग है ये, यहां सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, रिवाज है यहां। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तियार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम, यहां चिरकाल से यही रिवाज रही, अनादिकाल से यही रीति है यहां की। अब आप और हम कैसे निरंतर रह जाएंगे, इस रीति को कैसे बिगाड़ देंगे। तो यहां की जितनी साधन सामग्री, वो साधन सामग्री है, जो कुछ मिला है, दुख मिला है, सुख मिला है, हानि हुई है, लाभ हुआ है, संयोग हुआ है, वियोग हुआ है, जो परिस्थिति आई है, वो सब की सब परिस्थिति परमात्म प्राप्ति का साधन है, साध्य नहीं है। एक बात और ध्यान देने की, जो मैंने पहले कही है फिर भी कहता हूं कि जो परिस्थिति आती है वो अच्छी और मंदी नहीं होती है, वो बढ़िया और घटिया नहीं होती है, उसका सदुपयोग बढ़िया होता है और दुरुपयोग खराब होता है। मनुष्य परिस्थिति बदलने का उद्योग करता है, जो विफल है उसमें कभी सफल नहीं होता मनुष्य। कहीं हो जाए तो वो नहीं करेगा तो भी हो जाएगा, करेगा तो भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी नहीं होगा, उद्योग करने पर भी नहीं होगा। इस वास्ते परिस्थिति का उपयोग है, यही महत्ता की चीज है। और उपयोग करने पर भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी कल्याण करने वाली और बड़ी सुखदायी प्यारी से प्यारी परिस्थिति भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली, इसमें कोई फर्क नहीं। कितने भी लक्षण बात भगवान के विधान की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत विचित्र बात, धनवान से धनवान जिस तत्व को प्राप्त करेगा, निर्धन से निर्धन भी उसी तत्व को प्राप्त कर लेगा। कितनी भी लिखने बात, इसकी तरफ ख्याल करना चाहिए। पर ख्याल तभी होगा जब मनुष्य अपने लक्ष्य बढ़ा ले, इस उम्र में परमाणु तत्व को ही प्राप्त करना है, तब परिस्थिति का उपयोग कैसे किया जाए ये विद्या सीखेगा। परमात्मा भी कृपा करके मानव शरीर देते हैं सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी किंचित मात्र भी दुख ना रहे। इस तत्व को छोड़ करके लोग समझ रहे हैं धन इकट्ठा कर लेना, भोग भोग लेना है, बस ये कर लेना, इसके लिए शरीर नहीं है भाई, मानव शरीर है। बड़ी भारी महिमा है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं बहुसं भवान्ते, सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ ऐसा शरीर मिल गया है। इसको प्राप्त करके और ऐसी प्राप्ति करने वो प्राप्त करके जिसे प्राप्त करना बाकी ना रहे, तीन बात, ना जानना बाकी रहे, ना करना बाकी रहे, ना मिलना बाकी रहे। करना बाकी ना रहने से कृतकृत्य हो जाता है और जानना बाकी ना रहने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और पाना बाकी ना रहने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ना कर्तव्य रहता है, ना ज्ञातव्य रहता है, ना प्राप्तव्य रहता है। ये अगर बाकी रहा तो मनुष्य भी सफल नहीं है। करना बाकी रहेगा, जानना बाकी रह गया, पाना बाकी रह गया तो मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर कहलाने लायक वो मनुष्य नहीं। इस बात से लोग समझेंगे भोग भोग लो, मकान बढ़िया बना लो, ऐसा रेम कर लो, ये कर लो, ये बड़ी बात नहीं है। ये सुंदर सुंदर भोग भोग लेना ये मनुष्य का काम है ही नहीं। हमें एक बात बहुत बार याद आती है, यहां बंबई में मैं जब रहा था तो समुद्र किनारे घूमने को जाता तो एक सज्जन मिले थे, कुत्ता था उनके साथ, तो कुत्ते की रहन सहन बताई, बहुत बढ़िया जगह तो रखा जाता है, गर्मी के दिनों में टाटा रखा जा रहा है महाराज कसखस का, और खाने के लिए कुत्ते की चीज बढ़िया से बढ़िया चीज दी जाती है। एक दो ऊपर आदमी रहते हैं नहलाने वाले टहलाने वाले, और मोटरों में और हवाई जहाजों में चलता है। तो ऐसा आराम की बात लिखी होगी तो कुत्ता बढ़ने में मिल जाएगी, भगवान की प्राप्ति कहां हो जाएगी। ये हम बंबई की बात है, सब सामग्री कुत्ते भी रखी जाती है पास में, सब सामग्री। कलकत्ता में एक मकान खरीदा गया, बीती हुई घटना बताता हूं। तो वो एक कुत्ता था उसके लिए एक अगर कमरा अलग, उसमें तीन पंख चलते ऊपर, तीन तख्ते बिछाए हुए गद्दा से, कुत्ते की मर्जी यहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे, ताला लगा रहता, आदमी नौकर रखा हुआ आता वक्त पर सफाई करता, खिलाने के लिए दोनों वक्त आता। और वो बंबई लाया गया
तो फेट गाड़ी नई खरीद करके उसमें लाए। तो बीती हुई घटना है। तो ऐसा आराम तो कुत्ते को मिल जाएगी, मनुष्य ऐसा आराम करा सुख दया सुख भोगा, सुख भोगने के लिए है। तो अब मनुष्य ब्याह करे तो लुगाई ने ब्याह करना चाहिए। राम 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 राम, क्या दशा आपकी हो गई। मनुष्य शरीर है भाई, मनुष्य शरीर है, ये मामूली है नहीं, मामूली सुख लेने के लिए नहीं है, सुख लेने के लिए है ही नहीं। ये हितानुकार फल विषय है भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भोग परायण होकर के लोग बस धन इकट्ठा करो, कामोप भोग परमा एतावरी निश्चिता आशु संपत्ति महान, जिसमें ये बताया है कि पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना आजकल की वृत्ति है। इसका खूब खाता खेस दिया ये तस्वीर कि अंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान, अन्याय पूर्व धन कमाते हैं और भोग भोगने के लिए ऐश आरामने के लिए महिमा के लिए वाह वाह के लिए धन कमाते हैं, और धन कमाते हैं पाप पूर्व अन्याय पूर्व झूठ कपट वही मानी से। ये कलयुग महाराज की लीला है और इसका अनुमोदन करते हैं। क्या करे बेचारे भूले हुए, जानते तो है नहीं, और जानना चाहते नहीं, जानने वाला संग करते नहीं, शास्त्रों में लिखी हुई पढ़ते नहीं। अरे भगवान ने कृपा करके हमारे सामने शास्त्र रखे, पढ़ के देखो तो सही। तो ध्येय केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति, साधन अलग अलग है। बहनों के लिए और साधन बताया, भाइयों के लिए और बताया है, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के नियम दूजे बताए हैं, साधु आश्रम में नियम दूजे बताए हैं, परंतु सुख भोग के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अलग अलग काम है। गृहस्थ का काम करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधु हो गए तो साधु का पालन करो परमाणु तत्व की प्राप्ति के लिए। शेष कर्मण्य अभिजाता संसिद्ध लगते नर, मनुष्य अपने अपने कर्तव्य में ठीक लगा रहे तो सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो सिद्धि एक मिलेगी सबको। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाव शूद्राणाम परंत कर्माणि प्रविवक्ता ने स्वभाव प्रभेद गुण ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र चारों को एक चित्त मिले। कर्म अलग अलग होंगे सब तो एक मिलेगा, वो अलग नहीं। कर्मों में जितना वो छोटा है उतने उसके लिए रियायत ज्यादा है, शुक्र है सुगम है, और जितना वो बड़ा कहलाता है उतनी जिम्मेवारी ज्यादा है। पर तब तो एक ही मिलेगा। कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है। आप ध्यान दें तो मेरे तो ऐसी आती है आप गदगद हो जाए, मस्त हो जाएगी। कितने शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कृपा करके विधान रचा है, कितनी भगवान की विलक्षण ये रचना है जीव का कल्याण करने के लिए। पर इसमें देते ही नहीं ध्यान, क्यों नहीं देते। हर एक काम करना है तो कसौटी क्या, कुछ जो बढ़िया लगे करेंगे, घटिया लगे नहीं करेंगे। और उनकी कसौटी इंद्रिया, इंद्रियों को भोग अच्छे लगते हैं तो करेंगे, त्याग अच्छा नहीं लगे नहीं करेंगे। अरे ये कसूर तो कुत्तों के भी है, गधों के भी है, कौओं के भी है, सुअर के भी है। कौन वो पशु है जिसकी ये कसौटी नहीं है। आराम वाली बात करेगा, कसौर नहीं करेगा। तो वो पशुता ही आज मनुष्य में तो त्याग कहाँ होगा, तपस्या कहाँ होगी, इनका वर्णन कहाँ होगा, किसके लिए होगा। ये शासन क्यों आया है, लोग कहते थे हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे भोग मिलता है भोग भोगेंगे, तो भाग्य में लिखा है वो तो भोग भोगेगा, नहीं लिखा है वो मिलेगा नहीं, तो त्याग कौन करेगा। त्याग नाम ही खत्म हो जाएगा। भाग्य में लिखा है भोग सामग्री आती है, नहीं लेते काम में तो त्याग तो वहां होता, तो वो प्रारूप बाध्य नहीं करेगा ना। पुण्य रूपी प्रारब्ध है वो बाध्य नहीं करता, पाप रूपी प्रावृत बाध्य करता है, वो जबरदस्ती करता है, पुण्य रूप पाप ऐसा नहीं करता। एक कहानी सुना बड़ी सुगमता से समझ में आ गया, पुरानी कहानी सुनी है मैंने। राजस्थान के रहने वाले एक गांव से गंगा जी जा रहे थे। पहले जमाने में पैदल जाया करते तो गांव के बहुत से लोग साथ हो गए, वैश्य भाई भी और जाति भी, जो तमार भी साथ में हो गए, हरिजन भी साथ में। तो लोगों में ये प्रसिद्ध थी कि ये वैश्य जाति बड़ी चतुर है, बड़े बड़े होशियार होते ऐसे लोगों में प्रसिद्धि। तो समाज ने विचार किया कि अपने काम करो, तो ये वैश्य जाति करे वैसे करो, क्योंकि हम तो समझते नहीं, ये समझदार जाति ऐसे ही काम करो। तो पहुंचे वहां हरिद्वार पर, स्नान किया, स्नान करने पर पंडित का दान करो, संकल्प करो का दान करो। बढ़िया ने कहा अमुक चमार में मैं रुपये 100 मांगता हूं, वो मैंने कल दिया था ब्याज के लिए, आज मैं श्री कृष्ण अर्पण करना चाहूंगा, कर देता हूं, बस छोड़ देता हूं गंगा जी के नाम। संकल्प भर दिया, लोगों ने कहा 100 रुपये दान कर दिया सर। तुम्हारे ने देखा एक कौड़ी नहीं खर्च किया, 100 रुपये दान कर दिया, कितने होशियार है समझदार वो। उससे पूछा तुम क्या करते हो, मैं 100 रुपये को दान करता हूं। अच्छा करो ले लिया संकल्प, बोला कि मेरे में अमुक बढ़िया 100 रुपये मांगता है, वो करना अर्पण मत। पंडित ने संकल्प करा दिया, ठीक है भाषा विचार समझा नहीं, दोनों 100 रुपये दान कर दिया। अब आए घर पर, खेती करी, बाजरा पैदा हो गया, वैश्य भाई से जाकर के ब्राह्मण देवता ने कहा हमारी खेती में अनाज हो गया है, अभी आप लेगो तो सस्ता मिलेगा आपको और आप व्यापार में और भी कमा लोगे, और हमारे तो कर्जा है सिर पर उतारना है, इस बार से आप अपना धान ले लें। तो वैश्य ने कहा दिया भाई हमने तो वो दान कर दिया, तो मैंने दान दिया नहीं था, मैंने तो दान नहीं दिया था कि दान नहीं लिया, पर मैंने दान कर दिया, मैं नहीं लूंगा, मैं ब्राह्मण था वो लेने वाला। तो वैश्य ने कहा कि देखो भाई हमने दान कर दिया, हम तो लेंगे नहीं। कहते हम कैसे रखें, आपसे उधार लिया है मैं ब्याज के, तो मैं ब्याज के तुम बहन बेटी को दे दो, तुम्हारे भी दान देने की जगह है वहां दे दो, हम नहीं लेंगे। नहीं लिया सर, उस समार में 100 रुपये थे, वो बाजरा हुआ तो वहां पहुंचा बढ़िया, लाओ भाई 100 रुपये हमारे दो, 100 रुपये को अनाज दे दो। कहते हमने तो पुण्य कर दिया, गंगा जी के किनारे गंगा गुरु के सामने संकल्प भर दिया कि 100 रुपया का दान करिए। तो 100 रुपये दान कैसे करिए तुमने, तो कर्जा है तुम पर देना पड़ेगा सर, अमुक बढ़िया ने कर दिया। तो बढ़िया ने भी 100 रुपये दे थे ब्राह्मण को और गंगा जी किनारे कह दिया मैंने दान कर दिया, तो मैंने भी कर दिया। तो तेरे दान करने से नहीं होगा, कान पकड़ के ले लूंगा मैं, देना पड़ेगा। कहते क्यों, उसे दान कर दिया। अरे उसने तो दिया था, जो दिया हुआ है वो छोड़ सकता है, पर लिया हुआ कैसे छोड़ दे, लिया हुआ छोड़ दे तो सभी छोड़ देंगे, फिर जितना पाप किया सब छोड़ दे, श्री कृष्णार्पण कर दू, ये कभी हो सकता है। तो पाप अन्याय करते हो वो कर्जा होता है, वो फौजदारी होती है, वो आप छूटने से नहीं छूटेगी, शुभ काम आप करो वो त्याग कर दो। त्याग कहाँ होता है? जो शुभ कर्म का सुखदायी फल मिलता है उसका त्याग किया जा सकता है। पर दुख का त्याग तो हरेक करना चाहते हैं, मगर वो त्याग होता नहीं। जिसे वो दुख दिया वो तो भोगना पड़ेगा। इस वास्ते शुभ काम करो निष्काम भाव से, और अशुभ काम करो मत। कितना अशुभ काम भी हम निष्काम भाव से करेंगे? कि निष्काम भाव होता अशुभ काम होता ही नहीं। अतः कहना प्रियोते हम पापम करते अनिच्छन भी न चाहता, और पाप का आदमी क्यों करता है? काम ऐसा सो देता कि कामना सिंह होता। तो कामना का त्याग करना, कामना के त्याग का बड़ा महत्व है। भीतर में जो राग है पदार्थों के भोगों के प्रति खिंचाव है, ये बंधन का खास कारण है। वहां से वो मिटाना है। बाहर से चाहे गृह हो चाहे साधु और भाई हो चाहे बहन हो, सबके लिए एक ही बात है। भीतर की जो राग मिलती है उसे मिटाने से कल्याण होता है। इसमें आपको गीता जी के उदाहरण बता रहे हैं। भगवद गीता अध्याय दूसरा 62, 63, 64, 65 ज्ञात चार श्लोक है। याद है वो तो है ही नहीं, याद है वो देख लो पुस्तक देख लो। दूसरा अध्याय का 62, 63, 64 ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करे, चिंतन कर ले, याद करे बैठा बैठा विषयों का, तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती, चिंता पैदा हो जाएगी, और आसक्ति से कामना पैदा होती। कामना क्या? ये चीज मेरे को मिले, ऐसी इच्छा हो जाएगी। और उसमें कोई बाधा आ जाए तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध जोर से आने से सम्मोह हो जाएगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए होश नहीं रहेगा। क्रोधी आदमी ठीक ढंग से बोल नहीं सकता। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, पहली बात की हुई याद, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भूल जाता है क्रोध में। और बुद्धि वो जो भ्रष्ट हो जाएगी ना स्मृति, सम्मोह स्मृति बुद्धि, स्मृति भ्रसाद बुद्धिनाश, फिर अगर विवेक नहीं होगा और बुद्धिनाशात पढ़ने से भी पतन हो जाएगा। किससे? ध्याय तो विषयान, विषयान पद वही है, ध्याय तो विषय वही पद। अगर यह रागद्वेश वियुक्तेषु विषयान इंद्रिय स्मरण, ध्यान करने से नवद्वादी पतन की, राजद्वेष रहते विषयों का आचरण किया जाए। बताइए, राजद्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रिय स्मरण, आत्म बशीर अपने बस में रखकर के इंद्रियों से विषयों का आचरण, वही विषयान। और विधेय आत्मा मन के बस में प्रसाद की प्राप्ति, और वो प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों का नाश, प्रसादे सर्व दुखाना महान ऋषि हो जाए थे। और प्रसन्न चेत से याशु बुद्धि परियोगी सदे, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की परमात्मा में बहुत जल्दी स्थिति हो जाती, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती। किसी विषयों के सेवन करने से और याद करने मात्र से पतन हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितनी विचित्र बात। पर राग है भीतर प्रियता है तो याद करने मात्र से अनर्थ हो जाएगा। राग रहित होकर विषयों का सेवन करो तो भी विषय महाराज परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे, केवल पतन नहीं करेंगे, इतनी बात नहीं है। मनुष्य जन्म सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो खुद भी कैसे हम दूर कर दें इसको, तो यह ध्यान देना, ये कर्मयोग का विषय। कर्मयोग जो आचरण करना चाहता है उसके लिए विशेष ध्यान देने की, और कर्मयोग की प्रणाली मात्र साधक के लिए अपनाने लायक है। निरंतर साधन तभी होता है जब कर्मयोग की प्रणाली को लिया जाए, नहीं तो भजन ध्यान करते हुए साधन होगा और समय में नहीं होगा। और कर्म ही योग है, वहां पर करना ही योग हो जाएगा, तो जो कुछ करता है वो सब का सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो जाएगा। तो ऐसे जो कर्म करता है भगवान के लिए, संसार के हित के लिए, सेवा के लिए, उसको चाहिए कि जब कभी विषयों का सामना हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का सेवन करने का काम आ जाए, तू खावेगा भी, देखेगा भी, सुनेगा भी, सोवेगा भी, कपड़ा भी पहनेगा, आराम लेगा, तो ये विषयों का सेवन करते हुए खूब ख्याल रखे कि इंद्रियों में राग द्वेष पूर्वक न करे, राग पूर्वक करे नहीं, द्वेष पूर्वक छोड़े नहीं। आज किसी बात को ग्रहण करते हैं तो राग पूर्वक ग्रहण करते हैं, और त्याग करते हैं द्वेष पूर्वक छोड़ दें। ये कसौटी ठीक नहीं है, ये कसौटी पशु पक्षियों में भी है। तस्मात शास्त्र प्रमाणम दे कार्याकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र को सामने रखो। शास्त्र क्या कहता है, ऋषियों ने क्या कहा, मुनियों ने क्या कहा, वेदों में क्या कहा, स्मृतियों में, पुराणों में क्या कहा, उसके अनुसार करो। इंद्रियों को सामने लेकर करो तो पुष्पण आ जाएगा। मनुष्य से बहुत नीचा, हमने जो पढ़ा है पुस्तक में, मनुष्यों को पशु कह दिया तो पशु नाराज हो गए, मनुष्यों को मृग कह दिया तो मृग नाराज हो गए, मनुष्यों को सूर कह दिया तो सूर नाराज हो गए, कि हमारी बेइज्जती करते हो, हमारे समान मनुष्यों को कहते हो, क्योंकि क्यों नाराज हो गए। वो कहते हैं हमारे तो पाप कट रहे हैं, जो जो पशु जो सूरादी जो जो भोगते हैं, जो पाप कटते हैं, और पशु जो ऐसे और काम करते हैं उनके पाप बढ़ते हैं, हम तो नरकों से निकल करके मनुष्य जोड़ी की तरफ जा रहे हैं, और जो आचरण खराब कर इंद्रियों के विषयों में भोगों में फंसने वाले नरकों में जा रहे हैं, पशु बनने को जा रहे हैं, वे सूर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, नरकों में पड़ेंगे और हम निकलेंगे, हमारी बेइज्जती करते हो। बोलो, वो मनुष्य कल्याण लायक है तो भोगों को सामने रख करके बस कामो वर्मा भोगों को परमार एतावत में सिखा, बस रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना यही आनंद, राम 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 लुटिया ही भोग गजे भोग, ये मनुष्य की बुद्धि। थोड़ा सा विचार करो आप, आपका विवेक क्या काम आएगा, मनुष्य जोड़ी जितनी महिमा गाई है वो कहां जाएगी। उस वास्ते मनुष्य ने तुम्हें क्या चाहिए, जब जब विषयों का सामना आवे तब उन विषयों के वशीभूत न हो। भगवान ने कहा इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष ऐसे आते हैं, राग गुरु अथवा द्वेष गुरु काम करते हैं, तय और न दशमागत फिर बस में नहीं आना चाहिए, वो या तुम बस के ही इंद्रिय ही अपने बस में इंद्रिया हो वो इंद्रिय काम करो। गीता ने कहा जे ऐसा नित्य सन्यासी, वो भाई और बहन कोई जान हो उसको सन्यासी त्यागी समझना चाहिए। जे ऐसा नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी जो न द्वेष न काम करे, न द्वेष करता है न इच्छा करता है, कोई परिस्थिति है उसे द्वेष नहीं करता और जो मेरा भी नहीं करता, तो और न बस मा देते निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधा प्रमुख थे, ऐसा निर्द्वंद होता है वो सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये मान करके उसका ग्रहण त्याग करता है तो मुक्त नहीं हो सकता। इस वास्ते विषयों का आचरण करते समय राग द्वेष नियुक्त ही आत्मवश्यही इंद्रियही दुधे आत्मा विषयान परम, दुधे आत्मा, आत्मा अंतर्गण जिसका विधेय है, आज्ञा के अनुसार करता है, मन बुद्धि वश में है, इंद्रियां वश में है और इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है, तो सेवन करते हुए बाहर से सेवन भीतर में राग द्वेष नहीं है, ऐसे सेवन करने से क्या होगा कि प्रसाद मुझे व्यक्ति प्रसन्नता होगा। राजगुरु सेवन करने से भी प्रसन्नता होती, परंतु उस प्रसन्नता में जलन रहे और राजद्वेष रहित विषयों का सेवन करने से प्रसन्नता होगी, उसमें बड़ी शांति रहे। प्रसादे सर्व दुखाराम हानि, उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों का नाश हो। और प्रसन्न चेत को यासु बुद्धि परिवर्तित, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि संसार का संबंध राग और द्वेष में है। अब वो संसार का संबंध नहीं हुआ तो यही तेरे जित स्वर्ग हो, ये सामने सिद्ध माना उन पुरुषों ने, यही जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। जिसका मन शुद्ध है, निर्दोष है, समम ब्रह्म निर्दोष और सम परमात्मा है, और जिसका मन निर्दोष और सम है तस्मा ब्रह्मणी से तथा ब्रह्म सिद्ध है। सीधी बात है, बिल्कुल सब जगह परमात्मा है, तो आप बैठे हो वहां आपकी जगह परमात्मा नहीं है। सब समय में परमात्मा है तो अभी परमात्मा नहीं है। सब देश में परमात्मा है तो यहां परमात्मा नहीं है। सब वस्तु सब व्यक्ति में परमात्मा है तो आप में वस्तुओं में परमात्मा नहीं है, उसे अभाव है ही नहीं। आप तो वस्तुओं की राग द्वेष ऊपर रह गए ना, वहां पहुंचेंगे ही तक, उनमें आग हंसो मत, वो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी तत्काल। गऊ होती है ना, गऊ के थड़ा में दूध आता है, दूध दुनिया दूध पीती है, और जो तीसर होता है छोटा तीसर किडनी छोटे जानवर, वो वहीं लगे रहते हैं। गाय के जहां दूध आता उस थनों में लगे रहते हैं, पर दूध भी तो हुआ है, दूध के पास जाता है नहीं दिया है। ऐसी परमात्मा सब जगह मौजूद है, और दूसरे सेवन कर खून के ले दिया। अरे भैया दूध भरा है, छत्तीसगढ़ में परमात्मा भरा है, तो भोग भोग ले राजी हो जाए। बोले उसी विचार ज्ञान नहीं इतनी जरूरत है, तो उसमें दूध भरा हुआ है। अरे इसको ज्ञान है, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, समो हम सर्वभूते नमे द्वेश प्रिय, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण व्यापक, मया तत्विद सर्व जगत मूर्ति ना, सब में मैं व्याप्त हूं परिपूर्ण। पर उसको न लेकर के और संग्रह करते भोग भोगते और राजी होते मन में और सिखाते हैं ये जो भोग भोग लो, तो फिर मनुष्य भी क्यों आया? सुख भोगना हो तो पुण्य करके स्वर्ग में चले जाते, दुख भोगना हो तो नरकों में 84 लाख जोड़ी में चले जाते। मनुष्य शरीर खराब क्यों किया? भगवान ने बड़ी कड़ी बात कही, जो भोग भोगने में लगे हुए हैं उनके लिए भगवान का मोगम पार्थ है जीवित, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो अघायु है, पाप ही उम्र है उसकी, इंद्रियाराम है, इंद्रियों में आरमण करने वाला है। मोघम पार्थ जीवती, वो संसार में निरर्थक जीता है। तो भगवान शुद्धता से बोलते हैं, निरर्थक जीता है अर्थात मर जाए तो बड़ा अच्छा, पाप तो नहीं करेगा। अरे एक जगह रोक रखी है बेचारा, 84 लाख जीवड़ी से कोई जीव आता वो अपना कल्याण कर लेता, ये सीट क्यों रोकी एक, उसको तो खुली कर देते। ये घूमते तेरे ऐसे चोर है, सस्ते तो दंड मर देती, डंडा पड़ेगा तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके फिर हमारे डंडा पड़ेगा। इतना सुंदर अधिकार हमारे को मिला जिसमें भगवान कहते हैं, भगवान ध्यान देना, मैं तो मुहगतन का दास भगत मेरे मुगत मणि, भगवान जिसको मुगत मणि बतावे ऐसा मनुष्य शरीर मिला तो नरकों में चला जाए, कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी दुख की बात है। भाइयों बहनों सावधान रहो,
ये भोग भोगने के लिए, ऐश आराम के लिए, आश्रु संपत्ति में फंसने के लिए नहीं है। राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही कृष्यानाचरण कर्मयोगी को चाहिए। जब जब सामने विषय आवे तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांचों विषय आएंगे, मनुष्य शरीर है सामने चीज आवेगी, तो वो आवे तब क्या करे कि मन पर भी कंट्रोल रखे, इंद्रिया पर भी बस में रखे कंट्रोल रखे, इस पर अपना अधिकार रखे, राग द्वेष रहित होकर काम करे, सभी निर्लेप होकर काम करे तो प्रसन्नता होगी, एक चित्र में बड़ी प्रसन्नता होगी। अनुकूल भोगों के भोगने में भी प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता राज की होती है, रजोगुण में आकर के तमोगुण में जाती है, और ये प्रसन्नता त्याग से होती है, वो त्याग से गुणाती बढ़ानी गुणाती। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ऋषि उपजायते, तो राग द्वेष रहित में प्रसन्नता हुई है ना, वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति कराती है। यह तद अग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम, परमात्मा विषय प्रसन्नता से पैदा होने वाला सात्विक सुख होता है, वो सात्विक सुख निर्गुण बना देगा। प्रसाद हो आत्मबुद्धि प्रसाद जम, परमात्म तत्व के विषय में जो बुद्धि लगती है उससे प्रसन्नता होती है, उससे जन्म होता है सुख सात्विक, और बुद्धि से अतीत होगा वो अत्यंत सुख होगा, तो अत्यंत सुख को प्राप्त करा देता है। विश्वास से सज्जनों, ये मानव शरीर है, ये बड़ी सावधानी से इसका बर्ताव करना, बढ़िया चीज मिल गई है तो बढ़िया चीज का उपयोग ठीक तरह से करो, उत्तम रीति से करो, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये अवसर हाथ नहीं आता है जल्दी जल्दी। देवलोक में होने वाले भी इस शरीर को चाहते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा, सदग्रंथों ने कहा है कि देवताओं को दुर्लभ, ये मानव शरीर वो मिला है, देवताओं को दुर्लभ है मानव शरीर, देवताओं को दुर्लभ भोग नहीं है दुर्लभ, नंदन वन है वहां अमृत का पान है, अप्सराएं हैं, बड़ी भोग सामग्री है, वो देवताओं को दुर्लभ नहीं है, मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ है, वो प्राप्त किया है, अब फिर भोगों की तरफ जा रहे हैं। राम 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 राम, बहुत ही पतन की बात, उनसे शरीर प्राप्त किया तो ऊंचा चलो हजार ही पतन की तरफ क्यों जा रहे हैं। उद्देश्य रखो ठीक, आज आपसे आचरण न हो तो घबराओ मत, उद्देश्य बड़ा ठीक रखो, अंत में वो हो गए उसके लिए मानव शरीर मिला है, ये तो मनुष्य का अधिकार है, क्यों नहीं होगा। जब मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्म तत्व की प्राप्ति का पूरा अधिकार हो गया, जन्म सिद्ध अधिकार है, मनुष्य शरीर मिलते ही अपने कल्याण का अधिकार जन्म सिद्ध है, जन्म से स्वतः सिद्ध है हमारे। तो भाइयों बहनों, उस तत्व को प्राप्त करो। सासो माया तस्तरायो में स्वादिकम फलम, इसमें अंतराय होगा तो क्या विघ्न हो जाएगा तो स्वर्ग में चले जाओगे। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करता है और विघ्न आ जाएगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, ये तो विघ्न है। स्वर्ग के भोग भी गीता माया है, अति ही श्रद्धयो पेतो योगा स्थलित मानस, अंत में मन सलायमान हो गया तो अपराध योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति, भगवान ये प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उसी तो शाश्वती समा श्रुति नाम श्रीमतांगे योग वृक्ष हो भी जाए थे, योग वृक्ष स्वर्ग में जाता है, ये शरीर कामना नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विघ्न हो गया, पुनर्वृत्ति रही नहीं तो विघ्न में स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के हो या दुर्लभ है, स्वर्ग के देवताओं को हम लोगों के शरीरों से दुर्गंध आती है, जैसे मेले में काले में भरा हुआ सुअर हो मेले में चारों तरफ लत पर, उसे मिलने का मन करता है यार, ऐसे मानव शरीर मात्र से दुर्गंध आती है देवताओं को,
को छूना नहीं चाहते मनुष्य को। उन देवताओं में भी दुर्लभ ऐसा मानव शरीर मिला, और देवताओं ने जो सुलभ भोग वो भोग इसको मिलता नहीं, अच्छा ना करता है यहां के सूर्य के भोगों में विचार करो कहां नहीं है कल। भगवान जिसको बड़ा बना भक्तों के अगर भगवान हार जाते और सब से जीत भगत से हारे हो गए भगवान भक्तियां हार जाते भक्त को मुक्त मणि बनाते भक्तों की महिमा गाते हुए भगवान तृप्त नहीं होते। इतना बड़ा आदर इतनी बड़ी महिमा इतना बड़ा पद उसको टुकड़ा करके नरकों की तैयारी कर रहे हैं, 84 लाख दूरी में जाने वाले तैयार हो रहे हैं, अरे भोग रहे भोग कर रहे संग्रह कर सारा नहीं कर रहे हैं सुख ले लें। अरे महान दुख होगा दूसरों की संयोग व्यक्त बज्रे अमृत हो भवन दूसरे इंद्रियों के संयोग से आरंभ में तो अमृत की तरह लगता है और परिणाम में दुख निवर परिणाम में जहर की तरह होता है। आयु खय हो जाएगी समाज खराब होगा महाराज, अपना समय खराब होगा, स्वभाव खराब हो जाएगा, बल बुद्धि विद्या सब नष्ट हो जाएगी, आलस्य और प्रमाद होगा, नींद बहुत आवेगी, जड़ता बहुत आवेगी भोगों को भोगने से फिर भी उधर जा रहे हैं प्रत्यक्ष देख लीजिए हानि होती है प्रत्यक्ष फिर भी उधर जा रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात। राजद्वेष वियुक्त है जो वही विषयों का सेवन वही दृष्टा समाप्त कर रहे थे वे भी इनके वशीभूत नहीं होंगे और न बसमागत लोगों के बस बने लोगों पर आधिपत्य आपका जमा रहे मालिक बने रहो रुपये हजारों लाखों करोड़ आपके पास में रहे पर रुपयों के मालिक बने रहो लोगों के गुलाम मत बने। मालिक कौन है लाखों करोड़ हो गया चले जाए तो मन पर कोई असर नहीं है अब तो आप रुपयों के मालिक और 10-20 हजार भी करोड़ रुपये में खर्च हो जाए तो खनखनाहट भी होती है रुपयों का गुलाम है बात है रुपये मालिक नहीं है उसमें चला गया विचार महाजनी लिख सकते थे मात्राओं से इंजीनियर से लिख सकते थे तीन सब का ब्याह से नहीं पूछा क्या करें अभी ब्राह्मण को रखू महाराज जो रुपया देना पड़े इसे लाऊं कहां से घर खर्चा चलाता है तो कहा भाई ऐसे करो भगवान का फोटो रहो तस्वीर सामने रख करके धूप बत्ती कर दो कुछ बचादा भी एक दो जा और कहो महाराज कृष्ण बंधु जगत गुरु आप जगत के गुरु हैं तो जगत में मैं हूं गीता के अनुसार पूरी गीता याद कर ली और मैंने पूरी गीता सुनी बहुत कम अशुद्धि आई 700 श्लोक मैंने सुना अशुद्धि बहुत कम विचार करो ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सबके गुरु। कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत से बाहर कौन है? भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, भगवान है हमारे गुरु। भगवान से सीखे सिखाओ हमारा, ना कह नहीं सीखे भगवान। तो मेरे माता जी गुजारे, माँ भी तुम, बाप भी तुम, भाई भी तुम, बंधु भी तुम, धन भी तुम, संपत्ति भी तुम, गुरु भी तुम, और कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मेरे तुम्हारे आप ही हो। यहां तक कह दिया है कि मैं ब्राह्मण हूं तो आप यजमान हो मेरे, और यजमान में कहां से रहा, क्योंकि यजमान आप ही हो। सब कुछ आप ही तो हमारे भगवान है सब कुछ। तू दयाल गुण हो तो दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पाठ की तो पाप पूंजे हारी, नाथ को अनाथ गोर अनाथ कौन मोह जो बता, मोह समान अर्थ नहीं अर्थ हिर को सो। फिर बता जो कहां तक हूं सबके सब, नाते आपके साथ में है, नाथ पात्र मात्र भाई बंधु कुटुंब धन संपत्ति जो कुछ आप हो, मर्जी और जो भगवान को बना रहे, भगवान बनने तैयार है। ये था माम प्रपद्यन तो ताल पूरी भैया में माइया जा रही है बेटा तुम लाला मेरा बेटा है। हाँ मैया मैं तो बेटा तो हूं ही, बताओ बेटा करने में तैयार। ये कहते तुम तो हमारे पिताजी, हाँ मैं पिता हूं तो मेरी बेटी है। फिर मैं हाथ रख लो तैयार, कैसे विचित्र। फिर भैया तुम तो मेरे भैया, हाँ मेरा भैया हूं। प्रयागराज जी ने कहा सीताजी को, सीताजी मेरी बहन है, बड़ी बहन है। तो प्रयागराज जी को गोदी लेती है, प्यार करती है, रोने लग जाता तो आंसू बोलते भैया रो मत, ऐसे प्यार से बड़ी बहन पालन करे से पालन करती है। अयोध्या में संत बन गए मामा प्रयागराज जी, तो सब लोग कहते मामा जी कहते थे। अयोध्या जी माता हो गई, तो वो जनकपुरी में रहने वाले सीता जी के भाई, तो जहां जाओ गली में वह मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, सब दुनिया मामा जी के। वनवास हो गया भगवान राम जी को, उनको राम जी की लीला दिखने लग गई। वनवास हो गया तो मन ही मन में गड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं कि देखो आप वो तो वनवास गए जो आपके पिता ने हुक्म दे दिया, मेरी बहन को क्यों ले गया बना? जवाब दो। राम जी से जवाब पूछ, मन भाई का ही हक लगता है बहन घर को, पति का मन हक रही नहीं, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, आपके पिताजी ने वनवास दिया आपको, मेरी बहन को क्यों ले गए? बताओ चित्रकूट पहुंचे हैं, वहां कई दिन मिले नहीं तो कहने लगे कि छुपलिया छुपलिया डरता है मेरे, जवाब क्या दूंगा, छुपलिया डरता है मिलता नहीं है तो जंगल में। कई दिनों के बाद दर्शन हो गए, तब महाराज कही एक बार आप तो वनवास में आए तो आए, मेरी बहन को क्यों लाए बताओ? मेरी बहन कोमल कोमल मारी बहन के चरण अरबु पृथ्वी पर चले, कांटे गड़िया है कंकर गड़िया है, मेरी बहन इस जंगल में घूम जाती है, कहां रात्रि हो रहे ये जाड़ा पड़े, ये सर्दी, ये महाराज गर्मी, ये कभी वर्षा कभी गर्म हवा, कितना चलता है, मेरी बहन कौन है? रघुनाथ जी महाराज ने सफाई दी तो मैंने कहा कि आप यहां रहो, पर वो रही नहीं, मैं क्या करूं, अब लड़ने लगे बहन से, तो महाराज ने कह रहे थे क्यों आई है मैंने बताओ, छोटा भाई है लड़ता है बहन क्यों आई थी? पिताजी बोले भैया महाराज के साथ में रहने में मेरे को बड़ा आनंद मिला, महाराज के दर्शन करके मैं प्रसन्न होती हूँ। कहने लगे बौड़ी है बहू, उसी माँ की बेटी है ना, जैसा माँ का स्वभाव जैसा बेटी का स्वभाव, अब यहाँ कोई आनंद है जंगल में? पर माँ का स्वभाव जैसे बौड़ी स्वभाव है, अब सीधा ही तो बौड़ी है, मर्यादा है, बड़े चतुर बुद्धिमान है। तो चाल मैं ले जाऊं, तुमको जनकपुरी पहुंचा दूं, तुमको जो अयोध्या पहुंचा दूं, तो जहां चले। और डरने की बात नहीं, मैं साथ में हूं। जंगल में डर लगे, भय लगे, बड़ी क्या बात है, मैं साथ में हूं, मैं ले जाऊंगा। सीता जी, नहीं भैया, मैं तुम्हारा भी साथ ही हूं, हम क्या करेंगे बताओ। यहां बड़ा आनंद है, आनंद है, पर उसकी अकल में नहीं आता, क्या भोली है। इस बात को सुन सुन करके सीता जी राजी होती है। इतने स्नेह से भाई कह रहा है, छोटा भाई, इस बात सुन सुन करके जगत जननी जानकी जी खुश हो रही, प्रसन्न हो रही है। तो मेरे पर दया करने वाली घटो सही भावक राय जी नारदन। तो श्री रघुनाथ जी महाराज प्रयागदास जी कहते हैं, सारा कह रहे हैं, आप जाओ अयोध्या में रहो, खाट लाए तो ये ले जाओ, आप ही रहना है खाट पर, बिछौना लाए, जूती लाए, पहरी नहीं सर, हम तो ऐसे जंगल में रहेंगे, और आप चले जाओ अयोध्या, तो खाट पर आप रहोगे तो हमारे को बहुत आनंद मिलेगा। तब वहां से रवाना हुए, बड़बड़ाते हुए, हम तो नियम लिए हैं, खाट पर नहीं सोते, जूती नहीं पहनते, बड़े बड़े नियम लिए हैं, तपस्वी बने हैं, खाट बना कर चले वहां, और हम तुम्हारे साथ में नहीं रखेंगे। ऐसे बनी वहां वहां से रवाना हुआ, अयोध्या पहुंच गए, मेरे को फेंक दिया, साथ में नहीं रहने दिया। सुनते नीम के नीचे खटिया रखी रहती और उसको विश होते, कभी उस खाट पर कभी क्या तीन खाट ले गए। रघुनाथ जी महाराज कहते हैं तुम्हारे रहने से हमें आनंद आएगा, तो रघुनाथ जी आनंद आए सो इसलिए रिक्शा को जाते जाते फिर आगे खाट कर जाते। नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता से रामलला का सरवा, ये रामलला का सारा ये माउन हो रही थी, मिली जनाना ये चले। तो बात कितने कायदा रखे, संसार की कायदा ऐसा नहीं रखने वाले हैं भाई। रघुनाथ जी महाराज कहते सीता जगत जननी जानकी जी अपने छोटे भाई की बातें सुन सुनकर खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे। ये भैया कितनी दया करता है मेरे पर, ऐसा कौन है भाई। रघुनाथ जी महाराज खुश होते, सब खुश होते, संतों में बड़ा आदर हुआ, मामा प्रयागदास जी महाराज, अयोध्या में जितने संत रहते थे, मामा जी आदि, मामा जी महाराज, मामा जी महाराज, सब बड़ा आदर करते थे। और सीता को बहन जाते, सीधी सी बहन है हमारी, ये तो पहले आए थे तो जाने लगे तो सोने का थाल आया था, जान की भी यहां से जिस कुटिया में ठहर गए, संते मिठाई देखा, सोने का थाल कहां से है, ओहो आप भी बहन ने कौन नहीं किए, सब पाओ बोले, सब पंडित भोजन करता गया, बड़ा आनंद। रवाना होने लगे तो वो थाल उनके कपड़े में बांध लिए, ले जाओ विशेष गया आपकी बहन का, ले जाओ राम 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 राम, बहन की सूझ ना रखेगी नहीं रखेगी। अरे माँ तो बेटी को देखती है कि लेती है, संत कहते हैं बेटी ने जगत जननी है, संपूर्ण जगत का पालन करने वाली जगत माता है, तो जगत माता उन मेरी माँ जी तो बेटी है। मेरी माँ जी कन्या है, कन्या का धन माँ कैसे रखेगी, मैं नहीं मीठ कैसे सची हुई बात है, कन्या का धन कैसे रखे माँ मेरे लिए। अब रघुनाथ जी महाराज भी खुश होते हैं, सीता जी खुश होती है, संत लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और सीता जी वैसे ही प्यारा भैया मानते हैं, ये हमारे भाई सजनो, संसार में इतना आदर करने वाला, प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ ही दिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सर से कोई ना, ऐसे को उदार जगन ऐसे भगवान के रहते हम दुख पाए, जगह जगह पैसे के लिए, भोगों के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए, बदल भटकते फिर कुत्ते की तरह टुकड़े के लिए कुत्ता भटाइयो, ये मिल गया आवाज, ये मिल गया, ये मिल गया, क्या मिल गया, आश्चर्य कितना बड़ा पद दिया है भगवान ने। क्षमा करना में बात निकल गई है, गुलामी छोड़ो, अगर बुरी लगे तो खानी दे दो है। मैं कहना नहीं चाहता ऐसा, पर देखो ऐसे दिखता है, दुख होता है कि आप कौन हो, कितने बड़े घराने के लड़के हो आप, तो किस चीजों के पीछे, जो कि हाथ से पैदा करो उन पैसों के बस में हो जाओ, उन भोगों के बस में हो जाओ। याद करो कि हम कुछ गए परमात्मा के, परमात्मा हमारे। नारायण 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 का जीवन बना राय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
साथ। हो नाता हकज अगर सज गर बधिका अज खज जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कहु युग कहु सुति वे नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उबाऊ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सत हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता जय सिया राम जय जय सिया राम 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 गाय राम सुमिरिय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया